जब हमने उनको रियलाइज किया, समझना शुरू किया, तो उससे हमें स्ट्रेंथ मिली, उससे हमें पावर मिली। ये कि बाहर आपका टेम्परेचर मसलन 30 डिग्रीज है और आप यहाँ पर पुरसकून बैठे हुए हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, लेकिन आप यहाँ पर एक अच्छे टेम्परेचर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपने कुछ रूल्स को समझने की कोशिश की और उन रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आते तो आप किसी भी तरीके से मार्स तक नहीं पहुंच सकते थे, आप स्टार्स तक नहीं पहुंच सकते थे। तो मैं बातों का ये सोचता हूँ कि हमने फिजिकल वर्ल्ड के कुछ रूल्स को समझा तो हमें इतनी स्ट्रेंथ मिल गई। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स को समझ जाते फिर क्या होता? और हम सब जानते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये हमेशा फॉलो करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, कभी भी फिजिकल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आगे नहीं जा सकती। मसलन फिजिकल वर्ल्ड ये कह रही थी कि हजरत इब्राहिम को आग में जलना था, इतनी बड़ी आग थी, उस आग के अंदर एक ह्यूमन बीइंग के बचने का कोई क्वेश्चन नहीं था। कई गज दूर से, कितने दूर से, कितने मीटर्स के फासले से तो हजरत इब्राहिम को उसके अंदर फेंका गया था, कोई नजदीक नहीं आ सकता था। तो उस आग को फिजिकल रूल्स के तहत यकीनन हजरत इब्राहिम को जला देना था, उसमें कोई बचने का चांस नहीं था। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक छोटा सा सेंटेंस आया, या नारु कूनी बर्दन व सलाम, ए आग तू ठंडी पड़ जा और हजरत आदम के लिए पीसफुल हो जा। मामला खत्म हो, सब खत्म हो। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये हमेशा फॉलो करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड के चंद रूल्स समझे हैं, हमारी स्ट्रेंथ इतनी है। मैं सोचता हूँ दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी यकीन बिलियन ऑफ डॉलर में कम कह रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर हम मेडिकल साइंसेज पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, इससे इंसानों की जानें बच रही हैं और कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा है। मैं मानूँ और बीमारियाँ हम खुद इलाज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता बातों का, यानी अया हम लोग बीमारियाँ बना तो नहीं रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से। तो बेजाहिर कुछ समझ में आता है कि नहीं, हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम बीमारियाँ बना भी रहे हैं। कैंसर पहले इतना नहीं था जितना आ गए, और जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। बहरहाल तो बहरहाल ठीक है, हमने मेडिकल साइंसेज के ऊपर रिसर्च की, बिलियंस ऑफ डॉलर के ऊपर एनुअली खर्च किया, हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, इसका 1/10 अगर स्पिरिचुअल रूल्स पर खर्च कर देते फिर क्या होता? हमें नहीं मालूम। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। अलबत्ता ये एक अलहदा मामला है कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर बिलीफ में कमी नजर आ रही है, हमारे ईमान में थोड़ी कमी हुई है। उसकी बहुत सारी वजह थी। मसलन किसी ने मुझसे कहा भाई तुम ये पानी पी लो ना शिफा हो जाएगा, मैंने वो पानी पिया मुझे शिफा नहीं हुआ, तो मेरे बिलीफ में कमी हो गई। अच्छा जिसने मुझे पानी दिया कि पियो के शिफा होगा, उसने बहुत सारी इसकी कंडीशंस बतानी थी मुझे, इन इन कंडीशंस के साथ होगा, मैंने उनको फॉलो नहीं किया। अगर मैं कंडीशंस फॉलो नहीं करूं तो क्या फिजिकल वर्ल्ड भी काम करती है फिर? नहीं। हम सबको मालूम, आप कोई केमिकल लीजिए, आप अपनी बॉडी के अंदर दवाइयां जो आप जहर पिल्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, सारी ये दवाइयां ये केमिकल्स के सिवा तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये सोचा करता था, एक ज़माने में चांस मिला फिजियोलॉजी की एक सेमेस्टर लेने का, कुम में मैं कोर्स अटेंड कर रहा था, उसमें एक सेमेस्टर में फिजियोलॉजी भी था, नहीं क्यों रखा गया था। मैं उसमें बार बार देखता था, वो पहला काम भी कहते थे टेम्परेचर मेंटेन करो, टेम्परेचर मेंटेन करो। मैं एक दिन अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा भाई ठीक है टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये क्या मुश्किल है, हर बार टेम्परेचर मेंटेन करो, सबसे पहले उसको इस पे ले करो, इसकी क्या ज़रूरत क्या है? थोड़ा सा बॉडी अगर गर्म रहेगी तो क्या होगा? उसने बहुत सादा जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो माइक्रो लेवल के ऊपर हो रहे हैं, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो नहीं हुआ जो होना चाहिए, तो वो जो माइक्रो लेवल के ऊपर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये नहीं होंगे। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे आपकी बॉडी अपनी एक्टिविटी को नहीं कर पाएगी, फिर आप उसको लाख मेडिसिन देते रहे वो मेडिसिन भी अपना असर नहीं करेंगी, ये रियलिटी है। फिर अचानक मेरे जहन में क्लिक किया कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मिस कर गए, तो कोई सूरह यासीन हम पे असर नहीं करेगी। सबसे पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करो, फिर हर दुआ असर करेगी। अजीब अजीब दुआएं हमारे पास है। मैं एक दुआ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, तज़किरा करता हूँ, दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैजिक नहीं है, घर के मैजिक नहीं है, कोई समझे वैसे मैजिक है। मैं ऐसे ही रट लेता हूँ, उसके बाद उसको पढ़ता रहूंगा, दुआ का असर होता रहेगा, मेरे लिए ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, कभी भी नहीं होगा। शायद किसी के लिए हो भी जाए, खुदा कर भी दे, लेकिन रूल्स ऐसे नहीं है। अबू हमजा सोमाली, आपने इनका नाम बहुत सुना, एक दुआ मशहूर दुआ अबू हमजा सोमाली। यूं ही अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये जो दुआ अबू हमजा सोमाली हम लोग जिंदगी में एक आध दफा पढ़ लेते हैं तो थक जाते हैं। कभी एक आध दफा पढ़ ली तो फिर अगले साल सोचते हैं जब वो पढ़ने होंगे ना तो कुछ और कर लेंगे। इतनी लंबी दुआ है, समझ में नहीं आती। एक तो समझ में नहीं आती ना, अगर समझ में आए तो इंटरेस्ट भी होगा कि भाई उसके अंदर मीनिंग्स कितने हैं, कितने एनलाइटमेंट है और ये वो, तो समझ में आता नहीं है। वो पढ़ता रहता है, हम सुनते रहते हैं, बाकी बाकी एक बात जिंदगी गुजरती रहती है। ये लोग हम दर्श मानी है, इस दुआ में इतना अट्रैक्शन है। एक मौका मशहूर था कि जो आरिफ कौन है, इल्मे इरफान है, जिसने मेहनत की है, आरिफ आबिद अल्लाह की बंदगी करने वाले कौन होते हैं, तो यूं ही एक ज़माना मशहूर था, कहते हैं आरिफ और आबिद वो होता है जो इस दुआ को कुनूत में पढ़े, इस दुआ को कुनूत में पढ़े। अब कौन इस दुआ को कुनूत में पढ़ेगा यार, माह रमजान में एक दुआ पढ़ना मुसीबत बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आज से तकरीबन 30 साल पहले 40 साल लगा दी, एक आदमी ने नजफ में कहा कि पहले जमाने में रस्म ये थी कि जो इस दुआ को कुनूत में पढ़ता था ना तो समझते थे ये आरिफ है। और कुनूत में किसके पढ़े, नमाज शब की कुनूत, नमाज शब की कुनूत। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं देखूंगा कि कितने लोग पढ़ते हैं। मैं कल आज सुबह मैं नेट के ऊपर जाके फिर उसको वाक्य को सर्च किया। अल्लामा आयतुल्लाह काजी अली काजी तबतबाई का ज़माना था, बहुत बड़े आरिफ का ज़माना, आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद थे, आयतुल्लाह बहजत के उस्ताद उनका ज़माना था, बहुत सारे उरफा उनके हाथ के तरबियत याफ्ता थे। वो कहता है मैंने हरम में अमीरुल मोमिनीन में जाकर गिनना शुरू किया। अब जो घर में पढ़ रहे थे वो तो अलहदा, उनको तो हम काउंट नहीं कर रहे कि भाई नमाज शब उन्होंने हरम में क्यों नहीं पढ़ी, अगर आरिफ थे तो हरम में पढ़ते। फजर की नमाज काउंट नहीं कर रहे, वो तो हर एरा कर पढ़ ही लेगा। हम नमाज शब की बात कर रहे हैं, मसलन वो आदमी कहता है, क्या था मैं हरम में अमीर मोमिनीन में गया, मैंने नमाज फजर नमाज तहज्जुद की कुनूत में अबू हमजा सोमाली पढ़ने वाले काउंट करने शुरू किए, तो कहता है 70 तक तो मैंने भी काउंट किया था, 70 तक मैंने भी काउंट किया था। आखिरी आखिरी जमाने तक भी 40-50 बंदे मिल जाते थे। अब मैं एक बात सोचता हूं, इनको दुआ में क्या मिलता है, वो तो बैठ के पढ़ना मुसीबत हो रही है, वो तहज्जुद पे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, और मैं साल में एक दफा पढ़ता हूं तो घबरा जाता हूं, वो हर रोज पढ़ रहे हैं। पता नहीं इनके पास टाइम कहां से आता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, जॉब वगैरह ये वो समझ में नहीं आता। क्या आपके ख्याल में ये लोग बेकार बेरोजगार लोग होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, इनके पास वक्त ही वक्त होता है, मामला कुछ और है, इनके पास कुछ और है। ये जो अबू हमजा सोमाली हैं, ये मौला चौथे इमाम के सहाबी हैं, इमाम सज्जाद की ज़ात पे दुरूद भेजो मोहम्मद। एक दिन इनके बच्चे का हार्ट टूट गया, चौथे इमाम के सहाबी, इनके बच्चे का हार्ट टूट गया, बच्चे का हार्ट टूट गया तो ये गए हड्डियां जुड़वाने वाले के पास। मैं बादोकात वाक़ियात से कुछ पॉइंट्स निकालता हूँ, इस वाक़े से भी एक पॉइंट निकालता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हड्डी जोड़ने वाले को अरबी में कहते हैं जाबिर, जाबिर जाबिर कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ द लाइन सब्जेक्ट से निकल कर, जबर कसर आप इंग्लिश में भी अलजबरा कहते हैं, या अलजबरा अरबिक से लिया हुआ, अलजबर से जबर किसे कहते हैं, जबर कहते हैं किसी चीज़ में कोई कमी हो उस कमी को आप पूरा कर दें, इसको कहते हैं जबर। तो मसलन अगर आपके पास 0.15 है तो ये कसर है, ये छोटा हुआ हुआ है, इसमें कितना ऐड करें कि ये होल नंबर बन जाए, 1 बन जाए, 0.85 अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये एक बन जाएगा। इस अमल को अरबी में जबर और कसर कहते हैं। सारी अलजबरा हमने अरबिक से ली है। जबर कहते हैं इस कमी को पूरा करने वाले, वो जो हड्डियां जोड़ने वाला है उसको क्यों कहते हैं भाई जाबिर? उसको इसलिए कहते हैं जब हड्डी टूट जाती है ना तो फासला बढ़ जाता है दो हड्डियों में, ये दो हड्डियों के दरमियान गैप को ऐसे फिल करता है कि उसकी कमी को पूरा कर देता है, तो उसकी हड्डी जुड़ जाती है, इस खातिर इसको जाबिर कहते हैं। जब्बार कैसे कहते हैं? अब हम लोग उर्दू अरबी को उर्दू में पढ़ने वाले मुसीबत में फंस जाते हैं। अल्लाह के नाम के आगे लिखा है जब्बार और उर्दू में जब्बार कहते हैं जालिम को, अब फंस गए कि भाई ये खुदा तो जुल्म करता नहीं तो ये जब्बार क्यों है? भाई इस जब्बार का उस जालिम जब्बार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाबिर होता है कमी को पूरा करने वाला। जब्बार किसे कहते हैं? जो सबकी कमी पूरा कर देता है उसको कहते हैं जब्बार। अब हम अरबी में फंस गए, अरबी पढ़ते हैं उर्दू में और जब्बार कहते हैं जालिम, और खुदा के सामने खड़े होते हैं, खुदा नऊज़ बिल्लाह तू जालिम क्यों है? भाई खुदा जालिम नहीं है, वो जब्बार है। जब्बार है क्या मतलब? मेरे अंदर कमी ही कमी है, नक्स ही नक्स है, मैं तो सारा डेफिसिट डेफिसिट ही हूं, मेरे तो अंदर कुछ है ही नहीं, वो खुदा उसे पूरा करता है हमेशा। तो खुदा होता है जब्बार। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी भी जाबिर उस टेंस में है, वरना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को कहते हैं बड़े जालिम थे, देखो खुदा ने लोगों ने नाम ही जाबिर रख दिया था। नहीं भाई, वो जाबिर का मतलब होता है हड्डी जोड़ने वाला बेचारा, उसको आरबी में कहते हैं जाबिरुल इज़ाम, अज़म कहते हैं हड्डी को, इज़ाम यानी हड्डियां, जाबिरुल इज़ाम हड्डियां जोड़ने वाला। तो हजरत अबू हमज़ा सोमाली के बच्चे की हड्डी टूट गई, वो जाबिर के पास गए, हड्डी जोड़ने वाले के पास गए, उसने हड्डी जोड़ देखी, अरे हड्डी टूट जाती है तो वो लटक जाती है, तो उसने देखा बच्चे का हाथ लटका हुआ, उसने कहा कि बहुत सख्त टूट गई है, बहुत ज़्यादा टूट गई, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चटकी नहीं है, थोड़ा सा यानी फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर था, तो कहा कंप्लीट फ्रैक्चर है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें लकड़ियाँ लगाऊंगा मैं, इसमें पट्टियाँ लगाऊंगा, तो अभी तुम यहाँ रुको, मैं लकड़ियाँ पट्टियाँ लेकर आता हूँ, टाइम लगेगा इसमें। अब पता नहीं वो बच्चा बेचारा चिल्ला रहा होगा या क्या कर रहा होगा, हजरत जाबिर उस बच्चे को लेके बैठे रहे, अचानक उनके जहन में आया कि चौथे इमाम ने एक दुआ सिखाई थी और ये कहा था कि अबू हमजा मुश्किल में पढ़ो ना तो पढ़ ले। हजरत अबू हमजा कहते हैं कि मैंने वो दुआ उठाई, अपने जहन में सोची, दुआ पढ़ ली। मौला इमाम की जो दुआओं का मजमुआ है सहीफा, इस सहीफे के उर्दू के प्रिंट में ये दुआ शायद नहीं है, लेकिन इसका एक अरबिक प्रिंट है जिसके अंदर तमाम दुआएं उसके अंदर है, बस उर्दू की प्रिंट में मिल जाती है। कई मौका मिला मैं आपको कि किसी एक को कोई प्रिंट दे दूंगा इंग्लिश का ताकि उससे आप कभी इस्तेफादा करें, अलबत्त शायद ही मेरे और आपकी कहीं से हड्डी जुड़ेगी मेरा नहीं ख्याल, वरना ये सारे बोन के हॉस्पिटल सब बंद करके वहाँ पर आप खड़े हो जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हजरत अबू हमजा सुमारी ने बच्चे का हाथ उठाया, उसके ऊपर दुआ पढ़ दी, वो जो हड्डी जोड़ने वाला था वो थोड़ी देर में हड्डियाँ वड्डियाँ जोड़ने के लिए लकड़ियाँ लेकर आया, तो उसने बच्चे का हाथ उठाया तो वो समझा कि ये गलत वाला हाथ उठा लिया, उसने दूसरा हाथ उठाया, दूसरा हाथ भी सही था, तो मुझे याद है अरबी में रिवायत लिखी थी, उसने कहा तुम शिया लोग ऐसे जादू बहुत कर देते हो, पहले हमारे पास हड्डी लेके आते हो कि टूटी हुई है, उसके बाद कोई जादू करते हो उस पर हड्डी जोड़ के हमसे कहते हो कि हम लोग शिया देखो क्या क्या कर लेते हैं, क्या ना तुम शिया लोग बहुत ऐसे जादू करते हो। उन्होंने फरमाया ये जादू नहीं है, इमाम की दुआ है, मैं इमाम की दुआ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बच्चा सही हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी दुआ से हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? कोई प्री कंडीशन है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर हम वो मिस कर रहे हैं, और जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो हमें सीखना पड़ेगा अहले बैत से, ये देखना पड़ेगा वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। मेरे हम जैसे तालिबे इल्मों के साथ जो बहुत बड़ी एक मुश्किल है ना, जो मुसीबत में कह सकता हूं, और किसी हद तक अज़ादार में सैयदुल शुहदा के साथ भी है, वो अज़ादारी करने आते हैं और अहले बैत से वो मांगते हैं जो इन लोगों का दिल चाह रहा है। बहुत कम कोई अहले बैत से ये कहता है मौला हमें वहां पहुंचा दे जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, हम नहीं मांग रहे कुछ। अच्छा अगर हम लोग कहते भी हैं ना कि मौला जो आप चाहें वो कर दें, तो या अमेरिका या लंदन दोनों में से एक जो आप चाहें वो कर दें पहले मैं ऑप्शन लिमिटेड कर दूंगा, फिर जो आप चाहिए वो कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पता नहीं वो हमें क्या देना चाहते हैं और मैं छोटी छोटी चीजें लेके खुश हो जाता हूँ। हम लोगों की मिसाल कैसी है? हम लोगों की मिसाल बच्चों की तरह है। एक बच्चा इंसिस्ट कर रहा होता है मुझे ये चाहिए, और मुझे पता है ये इसको गलत चाहिए, ये लेगा मारा जाएगा बेचारा, मुश्किल पास जाएगा। मैं दिल नहीं चाहता कि मैं उसको दूं, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं दूंगा तो ये सारे दिन मुझसे लड़ता रहेगा, मेरे सामने मुंह बनाता रहेगा। मेरे अपने बच्चे भी यही करते, तो अब मैं क्या करता हूं, उन बच्चों की इस मुंह बनाने से बचने के लिए उसको पकड़ा देता हूं, पकड़ा देता हूं। उसके बाद जब मुसीबत में पड़ता है तो किसके पास जाएगा? फिर मेरे पास आएगा। तो फिर मैं क्या करूं, उसे डांटूं? मैंने दुबई के एयरपोर्ट पे खुद एक मुश्किल में फंसा हुआ था, बड़ा अजीब मंजर देखा। एक बात मैंने सीखी है, जिंदगी से सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, ये लाइफ एक बुक है, इसको इग्नोर मत करें। हम लोग सिर्फ किताबों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ से सीखें, जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा अजीब एक मैंने वाक्य देखा, अब और शायद कहने के काबिल भी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे उसमें खुदाई रंग नजर आया। आपकी खिदमत नाज करता हूँ, पता नहीं इसके लिए दुरूद भिजवाना भी कैसा है या नहीं। भारत सब हमने देखा ऐसी प्रॉब्लम में हम भी फंसे हुए थे, हमारी भी फैमिली सारी बच्चे बच्चों के साथ खड़े हुए थे, एक प्रॉब्लम में आ गए, तो देखा एक और फैमिली भी प्रॉब्लम में थी। जब उसमें वो लोग अरब थे, एक छोटी बच्ची थी, उसका एक बड़ा भाई था और उनके बाबा, बच्ची का बाप और बच्ची का भाई। बाप ने बच्ची को गोद में लिया हुआ था, बच्ची जिद कर रही थी, पता नहीं किसी चीज़ के ऊपर बहुत जिद कर रही थी। बाप बेचारा खुद हमारी तरह पासपोर्ट के मसले में उलझा हुआ था, उसने कुछ देर तो सब्र किया। जब उस बच्ची ने उसकी गोद में बहुत बलवा किया तो उसने बच्ची को ज़मीन पर गिराया और गिरा के चला गया। वो बहुत गुस्सा आया, जब बच्ची को बेचारी को ज़मीन पे जब उसने गिरा दिया ना, बच्ची तो अपने बाप से ज़रा अटैच थी, उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे गिरा के चला गया। तो इसका जो भाई था वो इसकी नज़दीक आने लगा ताकि अपनी बहन को हमदर्दी करे, तो ये बच्ची अपने बाप के ऊपर होने वाले गुस्से को अपने भाई को उतारने लगी, उसको मारने लगी। अच्छा उसने क्या किया, पिट गया, पिट गया। उसने दो चार हाथ उसको मारे, हंसता रहा पिटता रहा। फिर उसके बाद जब बच्ची का गुस्सा उतर गया ना, तो वो भाई से जाके गले लग के रोने लगी, तो उसने फिर गले भी लगा लिया उसको रोने के लिए। तो मैं सोचने लगा ये जो भाई है ना, ये इस वक्त नबी की तरह है, ये बिल्कुल नबी की तरह है, इस वक्त अपने कौम को नसीहत करता है, वो नसीहत सुनती नहीं है, वो इसे मारती है, बद्दुआ नहीं देता, पिट लेता है। उसके बाद ये कौम कहती है कि मौला हम आपके पास आने को तैयार हैं, तो फिर क्या करता है, फिर गले से लगा लेता है। काश हम लोग थोड़े से अकलमंद हो जाए, क्यों अपने इमाम से वो चीजें मांगे हैं जिनको मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो हमारे फायदे में आए ही नहीं असलम। अच्छा ये कब होगा, ये हम कब सीखेंगे, जब हमारा विजन सही होगा, जब हमारी ओरिएंटेशन सही होगी। बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में ओरिएंटेशन सही नहीं है, हमारा लाइफ के बारे में विजन सही नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ को कुछ और समझ रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं उसको, इस वजह से एक प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ चीज़ों पे फंडामेंटली हमें सही करना पड़ेगा, वो जो हुसैनी सकाफत में आपसे कह रहे हैं, वो सईद शहदा के कल्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें फंडामेंटली कुछ चीज़ों को सही करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें से क्या है, आपकी लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप जिंदगी को देखते कैसे, दुनिया को दुनिया के लिए देखते हैं या दुनिया को आखिरत के लिए देखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की है। चंद जुमले इस पे अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी खिदमत में अर्ज किया था, सईद शहदा ने जो कंपैरिजन किया है, अन्नास अबीदु दुनिया व दीन लायकुन अला अलसिनतिहिम, सईद शहदा ने दीन और उबूदियत को मुकाबले में रखा है दुनिया की बंदगी के। पर मैं इंसानों की दो कैटेगरी से, एक वो लोग हैं जो दीन और खुदा के लिए, और एक वो लोग हैं जो दुनिया और दुनिया के लिए, ये दुनिया के लिए मर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में आई है, बहुत दफा अर्ज करता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद जो रिलीजन की नॉर्मल डिवीजन है वो कोलैप्स कर रही है, मुझे लग रहा है। अब जो नई तकसीम बन रही है वो ये कौन अल्लाह वाला है, चाहे ईसाई क्यों ना हो, कौन दुनिया वाले हैं चाहे मुसलमान क्यों ना हो, नई तकसीम ये आ रही है। कुछ लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं मुसलमानों में भी क्रिश्चियंस में भी, कुछ लोग हैं बल्कि ज्यादातर वो हैं जो दुनिया वाले हैं क्रिश्चियंस में भी और मुस्लिम्स में भी। डिवीजन ये इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे वो डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुसलमानों का मुसलमान पाकिस्तान में दफनाया जाएगा, मुसलमानों का मुसलमान मर्द हुआ तो औरत, औरत हुआ तो मर्द से शादी हो, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल तकसीम है वो इस बात पर है ये खुदा वाला है या दुनिया वाला है। चूंकि जो दुनिया वाला हुआ इसका बिहेवियर बिल्कुल एक होगा चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, और अगर खुदा वाला होगा उसका बिहेवियर एक जैसा होगा चाहे मुस्लिम होगा चाहे क्रिश्चियन होगा। ये मुझे समझ में आ रही है इस तरह से। अब आप और मैं सबसे पहले अपने आप से पूछें, हम खुदा वाले हैं या दुनिया वाले, ये प्रायोरिटी अपने अंदर से निकालें, उसको पर जजमेंट लें अपने आप से कि भाई ठीक है मैं सैयद शहदा का आजादार हूँ, मौलाना ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई है, लेकिन इतने बरसों की आजादारी के बाद आखिर में बॉटम लाइन में दुनिया का हूँ या आखरत का हूँ। अच्छा अब मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन भी देनी है, क्या मतलब आखिरत का हुआ तो फिर दुनिया में जॉब छोड़ दूँ, गाड़ी नहीं करूँ, पहाड़ों में जाऊँ, गारों में रह जाऊँ? नहीं नहीं, ये सब नहीं, अहले बैत ने नहीं किया, वो आखिरत वाले थे 100% आखिरत वाले थे, लेकिन दुनिया में थे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस समझना, दुनिया में रहना है दुनिया के लिए नहीं रहना है। प्रॉब्लम ये है हमने रहना दुनिया में है लेकिन किसके लिए रहना, दुनिया के लिए नहीं रहना, अल्लाह के लिए रहना, उस और दुनिया के लिए रहना है। क्यों? ये सिर्फ 40-50 साल है, 60-70 साल इससे ज्यादा नहीं है। जो ट्रू प्लानर होता है वो किस चीज की प्लानिंग करता है, नहीं मैं अभी सब पाकिस्तान से निकला, मेरे पास एक शेड्यूल है मैंने उसको फॉलो करना है, और मुझे है कि पहले मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट के ऊपर इतने घंटे रुकूंगा, उसके बाद जहाज में बैठूंगा, फिर जहाज में इतने घंटे रुक कर मसलन अदर एयरलाइन से मैं दोहा पे उतरूंगा, इतने घंटे वहां पर रुकूंगा, ट्रांसिट करूंगा, फिर दोबारा इतने घंटे जहाज में बैठूंगा, फिर एयरपोर्ट पर उतरूंगा, फिर इतने देर एयरपोर्ट पर रुकूंगा, फिर बाद में टैक्सी में बैठूंगा या गाड़ी में बैठूंगा, फिर घर पर उतरूंगा। मेरे पास एक कैजुअल है, क्या मैं ट्रांजिट में बेड लगा लूं, अपने घर से बेड लेके चलूं कि मुझे ट्रांजिट जो एयरपोर्ट पे एक दो घंटे रुकना है वहां पे बेड लगा लूं? नहीं, मुझे वहां चाहिए ही नहीं है, एक दो घंटे की बात है, लेकिन जहां मुझे 10-12 दिन रुकना है वहां मुझे रूम भी चाहिए, बेड भी चाहिए। आप सिर्फ अपने आप से पूछिएगा आपने ज्यादा कहां रुकना है, कहां ज्यादा रुकना है। मैं नहीं कह रहा बेड सब निकाल के खड़े हो जाए, मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि हमें अपनी रूह को लेकर, स्पिरिट को लेकर बिलाखिर लैंड कहां करना है एट द एंड। दुनिया में सारी जिंदगी रहना है तो भाई ये तो 10-15 साल ज्यादा का नहीं है मेरे जैसे के लिए, वो तो कुछ पता नहीं। वैसे मैं कहता हूं हमारे दोस्त बहुत जन्नत पे जाने के लिए बेताब बैठे हैं, हमारा तो वैसे ही कुछ नहीं पता। कितने साल रहेंगे ये आपको देखना है, मुझे देखना है। प्रायोरिटी सेट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, उसके ऊपर प्लानिंग कीजिए और खुदा की मोहब्बतों को दर्द कर। हमारी कमी में से एक कमी ये है, मुझे समझ में आता है जो अहले बैत अर्थात कल्चर हमें मुसलसल सिखाता है, खुदा की मोहब्बतों को समझो। हम खुदा को रूलर समझते हैं, एक लेजिस्लेटर समझते हैं, कानून बनाता है, इम्प्लीमेंट करवा देता है, फाइन भी कर देता है। खुदा को एक मोहब्बत करने वाला नहीं देखते, खुदा की मोहब्बतों को दर्द नहीं करते। थोड़ा सा खुदा की मोहब्बतों को सोचना शुरू करें मामला कुछ और हो जाएगा। फिर जैसे मैंने वो छोटी सी मिसाल दी आपकी खिदमत में, दुबई एयरपोर्ट की जल की दिखाई, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले, मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा और अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, बल्कि जबकि ये जो दुनिया और आखरत का मसला है इसके ऊपर बात करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह ये कि कन्फ्यूजन रह जाती हैं। मसलन मैं मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में एक दफ़ा कहीं बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मौलाना आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा हाँ बताता हूँ। यार फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इसका उससे क्या ताल्लुक है? आखरत के लिए करूं तो क्या आखरत में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्या? ये क्या बात हुई? ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन ज़ाहिर है आप अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ एजुकेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी। आप हर दुनिया की चीज को आखरत के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, हम बाद अवकात लोगों को धोखा देते देते अपने आप को भी धोखा देने लगते हैं। आप मुझसे कहें आप क्या कर रहे हैं? इमाम की खिदमत कर रहा हूं। 10,000 दफा कहूंगा इमाम की खिदमत कर रहा हूं, फिर अपने गलत कामों को भी क्या कहने लगूंगा? इमाम की खिदमत कर रहा हूं, ये तो खिदमत नहीं है। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा वो तो इमाम की खिदमत नहीं है, लेकिन सबको 10,000 दफा का इमाम की खिदमत कर रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं मेरा गलत भी इमाम की खिदमत है। ये कहां से हो गया? तो हम लोग को जज करना पड़ता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरों से कहते कहते अपने आप को भी धोखा दे दूं। वो कैसे जज होगा? ये देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? कॉन्फ्लिक्ट में कौन किसको किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है? आपकी तरफ से, मेरी तरफ से? उससे पता चलेगा हमारी लाइफ की असली प्रायोरिटी कहां पे सेट हुई हुई है, उसको वहां से निकालें। अब यकीन फरमाइए कि आप सही तो शोहदा से मैं और आप क्या सीखना चाहते हैं 1400 साल के बाद? कल्चर का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, ज्योग्राफी का डिफरेंस है, एनवायरनमेंट का डिफरेंस है, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन जो चीज सीख सकते हैं मुझे कि सईद चौधरी ने लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या बताया, ये कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली हम सईद चौधरी से बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन ये काम कम सीख रहे कि लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कट खुदा के लिए होना चाहिए, उसके ऊपर सब कुछ कुर्बान होता है। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों के साथ क्या होता है? बच्चों के कैरियर पे सब कुर्बान, हम लोग नहीं कर रहे। हमारी मेन प्रायोरिटीज कुछ और हैं। बच्चों के कैरियर गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, दीन से ज्यादा नहीं। सईद शोधा ने हज़रत अली अकबर को कुर्बान किया, दीन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमें चेक करना पड़ेगा बार बार कि कहीं हमको गलती तो नहीं कर रहे। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, वक्त बहुत कम रह गया। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले वाले। अपने अंदर मीनिंग्स को डेवलप करें। मीनिंग्स को डेवलप, मीनिंग्स का डेवलप करना का क्या मतलब हुआ? कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, हम लोग जो डिसीजंस ले रहे होते हैं हमारी कल्चर से निकल रहे होते हैं। उन कल्चर्स में कुछ मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, की कॉन्सेप्ट्स। अगर वो की कॉन्सेप्ट सही हो गए बाकी कल्चर सही रहेगा। बाकी आप पैंट पहने या पाकिस्तानी ड्रेस पहने या अरबी ड्रेस पहने, कौन इसकी परवाह करता है? इसकी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है वो जो कल्चर के की कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। अच्छा, वो कौन कल्चर के की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, आप लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? सिर्फ यहां पर या कहीं और भी है? अगर कहीं और भी है प्रेफरेंस किसको है, ये सेट करें। नंबर टू, आप अपनी एग्जिस्टेंस किस चीज में देख रहे हैं, बॉडी में या सोल में? प्रेफरेंस किसको है, किसके ऊपर कितनी देर मेहनत की है, इसको सेट करें। इस दुनिया में, इस दुनिया के पीछे खुदा को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखते हैं कितने प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है उसको या नहीं है, इसको सेट कर। हम तीन रियलिटीज को इग्नोर कर रहे हैं, तीन उससे कहीं कम रियलिटीज की वजह से। बॉडी को देखते हैं, सोल को नहीं देखते, इस दुनिया को देखते हैं, हेयर आफ्टर को नहीं देखते, इस मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं, खुदा को नहीं देखते। उन तीन को देखना शुरू करते हैं जो सईद शोहदा दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये दुनिया मत देखो, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस दुनिया के पीछे कहां भाग रहे हो? अगर सईद शोहदा दुनिया के पीछे भागते, करबला होने का कोई चांस था? किसी ने बहुत अच्छा लिखा, कहने का अगर सईद शोहदा अपने किसी एक बच्चे को भी ना लाते ना तो सईद शोहदा के इस तमाम कुर्बानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। उसे क्यों नहीं लाया? क्वेश्चन मार्क क्या आता? क्वेश्चन मार्क यह आता कि सईद शोहदा ने इस जनरेशन को कुर्बान किया नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को डिग्निफाई करने के लिए। लेकिन सईद शोदा ने क्या किया, सबको लेकर आ गया। क्या साबित करने के लिए? यह साबित करने के लिए कि मैं अपनी अगली जनरेशन को भी नहीं देख रहा, दौ में कुर्बानी भी लाया, बिल्कुल अल्लाह के रसूल की तरह। अल्लाह के रसूल ने मुबाहला के अंदर अपने सारे खानदान को पेश कर दिया। खुदा ना करे नाउज़ बिल्लाह कोई फेलियर का 1% चांस होता, दैट स्टेक क्या था, रसूल की सारी जनरेशन एट स्टेक थी। अल्लाह के रसूल ने रिस्क लिया, डायरेक्ट रिस्क नहीं लिया, उन्होंने तुम कॉन्फिडेंट थे कि नहीं होगा, लेकिन अगर देखो तो सबको दाव पे लगा दिया था। इस क्या क्या साबित करता है ये, अल्लाह के रसूल की कॉन्फिडेंट यकीन कामिल। सैयदुश्शोहदा पूरी अपने फैमिली को लेकर आ गए, ये क्या साबित कर रहा है? सैयदुश्शोहदा दुनिया के लिए नहीं कर रहे, किसी और के लिए कर रहे। हमें देखना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में कुछ और कर रहे हैं बार। अच्छा, आप सैयदुश्शोहदा ने सब क्यों किया? उस खुदा की मोहब्बत की बुनियाद पर। मैं बार बार मोहब्बत की तरफ लाके आपको लाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और आ जाता है, मैं कहीं और चले जाना शुरू करता हूँ, वक्त को भी देखता रहता हूँ, उससे एक और प्रेशर बढ़ता रहता है। अल्लाह की मोहब्बत को दर्द कैसे करना है, ये पॉइंट कैसे आएगा मेरे दिमाग के अंदर कि खुदा सिर्फ लेजिस्लेटर नहीं है, खुदा कमांडर रूलर जज नहीं है सिर्फ, बल्कि खुदा चाहने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। आप सिर्फ इस बात को इस तरह से देखें, जब इंसान सख्त मुसीबत में पड़ता है तो किसे याद करता है? और सैयदुश्शोहदा जब आखिरी सजदे में थे तो किसे याद कर रहे थे? उस खुदा की मोहब्बत को। मैं मसाइब अभी शुरू नहीं करना चाह रहा, एक तो दो चार मिनट और आपसे अर्ज करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है सैयदुश्शोहदा ने हज़रत अली अकबर या हज़रत अली असगर के लाशे पर खड़े होकर एक जुमला कहा था, कहा था खुदा तू जानता है मेरे लिए सख्त है, लेकिन मैं झेल गया चूंकि तू देख रहा है, मुझे तेरे पे यकीन है, सख्त है मेरे लिए लेकिन मैं झेल गया, ये मैंने सब्र कर लिया। क्यों सब्र किया? तू देख रहा है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बाद औकात कुछ नहीं होता ना, इंसान मुसीबत में पड़ा उसको कोई एक जुमला सुना देना हमदर्दी का, उसका खून बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती, कहते अब मैं लड़ूंगा। खुदा की मोहब्बत चाहिए हमें, यकीन फरमाइए अगर ये मोहब्बत में और आप दर्द नहीं कर सके ना, तो फिर हमारे लिए इस दुनिया में रहकर इस करंट दुनिया से लड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, इसका अपसाइड डाउन है, ये आपको बहुत धोखे में रखेगा। इससे इसको बाकायदा आपने कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, वरना काम आसान नहीं होगा। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या पेश आती है? मुश्किल ये पेश आती है कि इंसान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, रिस्पेक्ट को कैसे बर्दाश्त ना करे, रिस्पेक्ट का इशू है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले सैयदुश्शोहदा कल्चर से एक वर्ड के ऊपर थोड़ा सा शुरू किया, मैं देखा मौलाना साहब उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करें तो मैंने उसको छोड़ दिया, उबूदियत खुदा और दीन, उसको मैंने छोड़ दिया, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं थी। मौलाना साहब उसको बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं, मौलाना साहब की सेहत सलामती के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। मौलाना साहब यहाँ नहीं है, जा चुके हैं भाई, मैं आप उनको मत देखें, गायब के लिए भी तो दुरूद भेज दिया जा सकता है, क्या मुश्किल है। दूसरा वर्ड जो सैयदुश्शोहदा के कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे समझ में आता है वो क्या है, कल इस पर अर्ज करूंगा, इज्जत। इज्जत हमारी दुनिया में वोकैबुलरी के मीनिंग्स चेंज हुए हैं। आप कहेंगे ये लोग मुबालगा करते रहते हैं, ये लोग अपने इमोशनल बातें करते रहते हैं, इस वजह से क्या है? बिलीव मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे कल्चरल वैल्यूज के जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी से चेंज हुई भी हैं, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। मसलन इज्जत की डेफिनेशन हमारी कल्चर में क्या है? इज्जत किसे कहते हैं? शर्म हमारे नजदीक, मॉडेस्टी हमारे नजदीक क्या है? मसलन किसी आदमी से कहना ये सस्ते से कपड़े पहनो तो क्या कहो? मुझे शर्म आती है। अल्लाह इसी शर्म के बारे में कह रहा था या कोई और शर्म नहीं? मैं एक बहुत जबरदस्त किस्म की गाड़ी में बैठकर और पता नहीं क्या कुछ करके कहता हूं, आज मैं अपने अंदर ऑनर फील कर रहा हूं, ये वो ऑनर था जो खुदा कह रहा था, इन्नल इज्जत लिल्लाह वल रसूल वल मोमिनीन वलकिनल मुनाफिकीन ला यअलमून। कौन सा ऑनर है? एजुकेशन। असल मैं तो जितना ज्यादा वोकैबुलरीज पे काम करता हूँ, मैं देखता हूँ नहीं सबके साथ मीनिंग्स खराब हुए हैं। एजुकेशन किसे कहते हैं? अल्लाह के नजदीक अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह के नबी को भेजा कि वो इंसानों को तालीम दें, हिदायत दें। ये एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, ये वही एजुकेशन जो अल्लाह के रसूल दे रहे थे। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, हमने नबी को भेजा तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दें, ये वही एजुकेशन है। वर्ड तो सेम है, ऑनर, एजुकेशन, डिग्निटी। किसे कहते हैं डिग्निटी हम? ये वही डिग्निटी है जो अल्लाह के नबी जिसको फॉलो कर रहे थे, सैयदुश्शुहदा जिसे फॉलो कर रहे थे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी कल्चर का प्रिज्म बिल्कुल अपसाइड डाउन है, ये पिरामिड चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और आपको जैसे को एक एक पांव पे पांव फुट स्टेप सैयदुश्शुहदा का रखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए भाई वो कल्चर है कौन सी, वरना नहीं हो पाएगा, हम लोग डॉट हो जाएंगे। यहां वाले लोग कहेंगे, पूरी दुनिया के लोग कहेंगे बच्चों का एजुकेटेड करो, हम भी कहेंगे हाँ कुरान में भी था एजुकेशन, हम गए एजुकेशन के पीछे, ये वही जो कुरान ने कही थी। आप कहेंगे फिर क्या मतलब यूनिवर्सिटीज ना जाए? मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा, मतलब हमेशा जुमला साइड में लगा देता हूं, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग का दरवाजा ना खोले, बाद में पता चले कुछ और शुरू हो गया। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वो एजुकेशन नहीं है, जरूरी है करें आप जरूर, मैं भी करूंगा, ये वो नहीं है, वो कुछ और है। ये वो डिग्निटी नहीं है, ये वो ऑनर नहीं है, ये वो प्राइड नहीं है जो अल्लाह के रसूल कह रहे थे। असल सबके स्टैंडर्ड्स ही चेंज हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम इज्जत के ऊपर कल बात करने की कोशिश करेंगे। इज्जत किसे कहते हैं? ऑनर किसे कहते हैं? डिग्निटी किसे कहते हैं? ये मैं आपसे क्यों अर्ज कर रहा हूं? हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस पर नहीं कर सकते, इस पर नहीं कर सकते। यादव इंसान के तौर पर अगर मुझसे कोई कहे नमाज पढ़ोगे, तो हाँ पढ़ लूंगा, कितनी देर लेगी? 10 मिनट लेंगे। मसलन किसी से कोई कहे ज़कात दोगे, कम्स दोगे, तो क्या कहे भाई अगर अपने हाथ में वापस आ जाए तो फिर दे दूंगा, घूम के वापस आ जाए, पैसे नहीं दे सकता। लेकिन एक आदमी आएगा क्या कहीं को बात, पैसे भी दे दूंगा, 20% मांग रहे हो ना, ठीक है जो रिमेनिंग है उसमें से 20% दे दूंगा, खुम्स भी हो गया। उसके बाद उससे कहें तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, इसे बर्दाश्त करोगे? अब लोग स्लिप करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, रिस्पेक्ट तो चाहिए। मैं नहीं कह रहा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन कॉस्ट क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए फिर चाहिए नहीं चाहिए? ये हमारी बहनें पर्दा कर रही हैं ना, ये हमसे ज्यादा मुजाहद कर रही हैं, ये बातों का अपनी रिस्पेक्ट लूज करती हैं, इस पर हम फील भी नहीं कर रहे, ये लोग रिस्पेक्ट लूज करती हैं बातों का, ये जिहाद कर रही हैं। मैं अफ्रीका में एक दफा एक शहर में से गुजर रहा था, अलबत्ता ये भी अर्ज कर दूं, बहुत सारे दुनिया के अकलमंद पर्दादार औरत को देखकर उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कमिटेड है, ये कमिटेड है। मर्दों में भी ऐसे ही है। अफ्रीका में एक मुल्क से गुजर रहा था, हर चीज वाहियात, हर चीज खराब, देख देख के मेरा दिमाग थक रहा था। 3 दिन बाद या 4 दिन मुझे वहां पर रुकना था, मैं सोच रहा था कब ये खत्म हो, वापस जाऊं यहां से कहीं और जाऊं। अचानक बाजार से गुजरते हुए मैंने एक खातून को देखा, मैंने मालूम वो कौन थी, वहां पर रहने वाले अहले बैत के चाहने वालों में से कोई थी, खूबसूरत पर्दा करके वो अकेली रोड के ऊपर चल रही थी। तो अचानक मैंने अपने आप को उसके सामने बहुत हम्बल फील किया, मैं कह नहीं ये मुजाहिदा, ये जिहाद कर रही है, ये इसका जिहाद है। कितना कॉन्फिडेंटली वो पर्दा करके अकेली रोड के ऊपर चल रही है, उस जगह पर जहां मैं मर्द होकर यहां पे चलने में मुश्किल फील कर रहा हूं, इज कॉन्फिडेंट, ये जिहाद है। क्यों? रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगाने को तैयार है अगर बात दीन की हो। इस इज्जत हम कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई ये करता है ना, तो दुनिया को उसके सामने सर झुकाना पड़ता है कि कभी कोई इंसान अपने आइडियोलॉजी की खातिर, अपने आइडियाज की खातिर, अपने कमिटमेंट की खातिर अपनी रिस्पेक्ट भी दे दे। कहते रिस्पेक्ट जाए तो जाए, आइडियोलॉजी नहीं, मेरा कमिटमेंट पीछे नहीं जाए, मैं कमिटेड हूं। और मैं बार बार अपने दुश्मनों से कहता हूँ, कभी हम लोग रोड पे धरना दिए बैठे होते हैं ना, तो मैं उनसे बार बार कहता हूँ, देखो अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि हमें मार के असरदारी से पीछे हटाओगे, तो मैं तुमको बता दूँ हम कमिटेड हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मरने को मरेंगे, असरदारी से पीछे नहीं हटेंगे, हम शहीद उशोदा से कमिटेड हैं। हमने बचपन से ये लेसन अपनी माँ से लिया है, अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे ना तो हम अपनी आइडेंटिटी खो बैठेंगे, हम नहीं कर सकते, चाहे भी तो नहीं कर सकते। मैं अपने तौर पर सोचता हूँ, मेरी जिंदगी के तकरीबन 50 साल गुजर गए, अभी कोई चांस है कि मैं सोचूं अपने माँ को इमाम हुसैन से दूर करूं? खुदा ना करे नाऊज़ बिल्लाह कभी आइडिया मेरे दिमाग में आए, मैं अब इस जगह पर आकर कह रहा हूं मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता हूं, मेरी सारी आइडेंटिटी इसके ऊपर बन गई है, मैं डेवलप हुआ हूं इसी के ऊपर, मेरे सारे आइडियाज, मेरे सारे ड्रीम्स सब के सब शहीद शहदा के ऊपर बन गए, तो मैं कैसे इससे अलहदा हो सकता हूँ? अब अगर मेरा दुश्मन मुझे कहे अगर तुम अलहदा नहीं हुए तो हम तुम्हें मार देंगे, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे ट्राई करूँ और ट्राई करूँ, मैं मुकाबला करूंगा, इसे मरूंगा नहीं आसानी से, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो मुझे मार के पीछे हटा सकते तो ट्राई करो, लाओ मारो, नहीं हटा सकते तुम, हमने मरना सीख लिया है। और मैं कसम खा के भी कह सकता हूं जिस कौम को मरने की तैयारी मिल जाए ना उसे कोई नहीं हरा सकता, जो मरने के लिए तैयार है, सारा जो फियर, जो सारी वीकनेस आती है ना वो खौफ से आती है, सारी वीकनेस फियर से आती है, और सबसे बड़ा फियर दो चीजों का होता है, या मौत का होता है या डिसरिस्पेक्ट का। अगर ये दो फियर कोई अपने अंदर से निकाल दे, मौत से ना डरे, बेइज्जती से ना डरे अल्लाह की राह में, इसको कोई नहीं डरा सकता, ये फियरलेस है। और फियरलेस होने का मतलब क्या है? बहुत पावरफुल, ये पावरफुल है, इसको कोई नहीं हरा सकता, और शहीद उशहदा इमाम है, इस फील्ड में भी इमाम शहीद उशहदा है, द मोस्ट फियरलेस पर्सन। ना मौत का खौफ है, ना डिसरिस्पेक्ट का खौफ है। और जो उन्होंने फैलाया, कोई पूछे भाई इमाम हुसैन का पैगाम कितना फैला, अभी तो कुछ भी नहीं देखा हमने, इस पे तो मैं कसम भी खाऊंगा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा, कसम खा के कह रहा हूं, अभी जो अगले चंद सालों में इंशाअल्लाह हम और आप देखने वाले इमाम हुसैन के नाम पर, फिर आप देखेंगे पैगाम फैलना किसे कहते हैं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है। और जो पहला शख्स जिसने इस बात को देखा कि मौत को शिकस्त दो, डिसरिस्पेक्ट को शिकस्त दो, वो हुर था, सबसे पहला आदमी जिसने इस बात को एहसास किया, नहीं अब नहीं, मामला खत्म, 1000 आदमी का कमांडर था, इसको रिस्पेक्ट मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, 1000 आदमी उसके सामने सर झुका रहे थे यार। आप कहीं पे चल रहे हो ना, 1000 आदमी आपके पीछे असलाह लेके चल रहे हो, आपके यहां फायर, तो 1000 आदमी फायर कर दे, यू फील पावर कि यार मेरे पीछे 1000 आदमी चल रहा है, जिसको मैं कहता हूं फायर कर तो फायर कर देता है। इन्होंने कहा नहीं, मेरी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब मैं बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि वक्त कम है। मैं एक बात हमेशा सोचता था और आप यकीन सोचते हैं, मैंने पहली बार जिस पर भी शायद अर्ज किया था आपकी खिदमत में, सही फैसले कौन करवाता है? मैंने आपसे कहा था एक चीज, एक कल्चर होती है जो सही फैसले करवाती है, एक और चीज भी थी, तो मैंने कहा था दो चीजें सही करवाती हैं, एक चीज होती है, एक और तौफीक, अल्लाह की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस उतरती है उस सर्टेन टाइम पर, वो फैसले सही करवा देती है। अच्छा ये जो सर्टेन टाइम पर जो क्रिटिकल टाइम होता है, इसके ऊपर एक गाइडेंस आती है, वो स्पेशल गाइडेंस, ये क्यों आती है? इसका कोई रूल है या नहीं है? इसका भी रूल है। वो कब आती है जो मुझे अभी तक समझ में आया? दो बातों से आती है। नंबर एक, किसी वीक हेल्पलेस की हेल्प करने से, नंबर वन। नंबर टू, अहले बैत की रिस्पेक्ट करने से। मोस्ट क्रिटिकल टाइम पर एक डिसीजन लो, राइट रॉन्ग इधर से उधर का मामला फर्क हो जाएगा, सही फैसला कैसे होता है? दो वजह से होता है, या कल्चर करवा देती है, या खुदा की तौफीक देती है। तौफीक कैसे आती है? या हेल्पलेस की हेल्प करने से आती है, या अहले बैत के एहतराम से आती है। हुर ने सही डिसीजन कैसे लिया? अहले बैत के एहतराम से लिया, अहले बैत के एहतराम से। हुर कैसे भी थे, यजीद के लश्कर में थे ना, اہل بیت کا احترام کرتے تھے. روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب میں کوفہ سے چلنے لگا تو مجھے پیچھے سے ندا آئی اب شروع ہو بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو حور کہنے لگے, حور نے کسی سے بتایا بعد میں, کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو حسین سے لڑنے جاتا ہو اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے. سید الشہداء کو بہت اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے, ان کو پہچانتے تھے کہ امام حسین کون ہے. تو کہا تو حسین سے لڑنے جا رہا اس کو جنت کہاں ملتی ہے. اس کے بعد کہا نہیں شاید کوئی چانس ہے میرے. حور آگے بڑھے, سید الشہداء کے سامنے پہنچے, ایک کمانڈ لے کر آئے اور اس کمانڈ کو انہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ امام حسین کا راستہ روکیں. سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہا کہ میں تمام تر رسپیکٹ کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, محبتوں کو درد کریں. میں تو خیر شرمندہ ہوں آپ کے سامنے, میں کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا, لیکن آپ ظاہر مشکل بھی اٹھاتے ہیں, کل آپ کو کہیں جانا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. ویسے اس کے مقابلے میں دوسرے اٹھا رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, دوسرے بیچارے جانا دیری پہ رکھ کے آتے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب بھی آپ کوئی مشکل اٹھائیں نا سید الشہداء کے نام پر, تو صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے گا جو اب میں آپ سے کہنے والا ہوں. سید الشہداء کے سامنے حور پہنچے ہزار کے لشکر لے کر, کہا ہم آپ کا راستہ روکنے آئے. سید الشہداء نے جیسے ہی حور کو دیکھا تو کہا حور یہ بعد میں بات کریں گے, یہ بتاؤ ہونٹ تمہارے پیاسے کیوں ہیں, چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے. سر جھکا لیا حضرت حر نے, حضرت حر نے سر جھکایا, آدمی باشرم باحیا انسان تھے, کہا مولانا پیاسے ہم پیاسے کافی وقت سے پانی نہیں پیا. کہا ٹھیک ہے اب یہ بات میں بات کریں گے کہ تم راستہ روکو گے نہیں روکو گے, ہم تمہارے لشکر کو پانی پلائیں گے. امام نے ایک منزل پہلے, ایک جگہ اس سے پہلے اسٹے کیا تھا, بہت سارا پانی ساتھ رکھا تھا پریکاشن کے طور پر کہ اگر ہمیں کہیں پانی سے روک دیا تو ہمارے پاس پانی کا اسٹوریج ہونا چاہیے. اپنے ساتھیوں کو بلایا, کہا یہ ہور کا لشکر ہے اس کو پانی پلاؤ. لوگوں نے کہا کہ مولا اگر اس کو پانی پلا دیں گے نا تو یہ تو ایک ہزار ہے, ہم لوگ تو کچھ ہنڈریڈ سے زیادہ نہیں ہیں, تو یہ تو سارا پانی پی لیں گے, ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا. امام حسین نے صرف ایک بات کہی, فرمایا ہم پیاسے کے اوپر پانی بند نہیں کریں گے. ہمارے جد امجد نے بھی کبھی بند نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. لمبی کہانی ہے, میں نہیں سنا پاؤں گا کس طرح جنگ صفین میں معاویہ نے یہ کام کیا تھا, کس طرح اللہ کے رسول کے سامنے یہودیوں نے کیا تھا. نہ اللہ کے رسول نے پانی بند کیا تھا, نہ امیر المومنین نے پانی بند کیا, نہ حسین نے بند کیا, لیکن اس کے بچوں پہ سب نے بند کر دیا. ایک علیحدہ کہانی. حضرت حر کے لشکر کو کہا ہم تمہیں پانی پلائیں گے. حضرت حر کے لشکر کا ایک سواری اس کہانی کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے میرے ہاتھوں میں دم نہیں تھا, میری ٹانگوں میں مردگی آ گئی تھی, میں زمین پہ گر گیا تھا, میں ڈیزرٹ میں تھا, اپنے آپ کو زمین کے اوپر چلا رہا تھا کہ کسی طرح پہنچوں, تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا جیسے کوئی میرے لشکر کے لوگ پانی پی رہے ہیں, تو سوچنے لگا کہ میں اپنی طاقت کو جمع کروں کہ اٹھوں, تو اٹھ نہیں سکتا تھا, اپنی زمین کے اوپر ہی جیسے بچوں کی طرح چل رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں, تو میں سوچا تھا میں ایسے ہی پیاسا مر جاؤں گا, کوئی مجھے نہیں دیکھ پائے گا. تو کہنے لگا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا جیسے امام حسین نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. وہ سب کو پانی پلاتا دیکھ رہے تھے کہ سب پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے, اچانک امام حسین نے دیکھا دور ایک آدمی پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو امام حسین نے کیا کیا, خود پانی کا برتن اٹھایا, اس آدمی کے پاس آئے, اس آدمی کے پاس آئے, پیاسے کے پاس. یہ کہتا ہے میں بالکل آخری سانسوں پہ تھا, بس میں مرنے والا تھا, امام حسین پہنچ گئے. کہنے لگے امام حسین نے مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو جمع کرو, چلو بناؤ, اس کا ایک برتن بنا لو ہاتھوں سے, میں اس میں پانی ڈالتا ہوں. تو کہنے لگا میں اتنا پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا تھا, میں نے ہاتھ جمع کرنا چاہے نا تو پانی گر گیا, میرے ہاتھ جمع نہیں ہوئے, میرے ہاتھ رکے ہی نہیں. تو کہنے لگا جب امام حسین نے یہ دیکھا نا تو کہا تم گھبراؤ نہیں, میں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا. کہا بس منہ کھول دو اپنا, تم میں ہاتھ جمع کرنے کی طاقت نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں, منہ کھول دو, میں حسین ہوں, میں پانی پلاتا ہوں, کسی کو پیاسا نہیں چھوڑوں گا, پانی پلاؤں گا تجھے.
अरे तो बहुत कुछ याद आ रहा है अभी कहने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है वाकई कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कल कोशिश करूंगा किसी और टाइम पर। ये इमाम हुसैन है प्यासे की प्यास को याद रखते हो, खुदा की कसम आपको आजादार है अगर आपने मुश्किल उठाई है क्या इमाम हुसैन बुला देंगे तेरे आजादार ने मुश्किल उठाई है। आप में से कोई थक गया है, कोई भूखा है, कोई कम सोया है, मैं कसम खा के कहूंगा इमाम हुसैन को पता है मेरा आजादार भूखा। हो नहीं सकता कि वो ना सोचे मेरा आजादार भूखा है, मेरे नाम पर आया है। अभी तो मैं इमाम हुसैन के लिए कह रहा हूं ना, सैयद है ताहरा भी जानती, बर्दाश्त कर लो कुछ देर के लिए भूख, बर्दाश्त कर लो कुछ सख्तियों को, कुछ तीरों को, कुछ नेजों को, कुछ गोलियों को, सबको बर्दाश्त कर लो, कल सैयदा से कोई अजर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और एकदम से घबरा के मैं प्रभु के आज क्या करूं, आपकी खिदमत में सब बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह आशूर आए और घबरा गए, कहा ये तो मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया, सारी जिंदगी सैयदा का एहतराम किया था, फातिमा का एहतराम किया, जब सैयदुश्शुहदा ने हुर के घोड़े पे हाथ डाला और कहा हुर तुम मेरा रास्ता रोकेगा, सकलत काम मेरी मां तुझ पर रोए, मैं तालिब इल्म बना, नया नया तालिब इल्म बना, मैंने पहली दफा शेख अब्बास कुम्मी की किताब में जुमला पढ़ा था कि सैयदुश्शुहदा ने हुर से कहा सकलत काम तेरी मां तुझ पर रोए, तो मैं जुमला पढ़ के हैरान रह गया, जुमला पढ़ के हैरान रह गया कि इमाम हुसैन सा चाहने वाला किसी की मां के लिए ये नहीं कहेगा। लेकिन फौरन समझ में आया क्यों इमाम हुसैन ने कहा था हुर को तेरी मां रोए, ताकि हुर ये सोचे कि देख हुसैन की मां कौन है, किसका रास्ता रोकने आया है। इसी सैयदा के एहतराम ने हुर को बचा लिया, सैयदा का एहतराम किया ना उसने, हुर को जिंदगी मिल गई, हुर को बचा लिया इसी एहतराम ने। सुबह आशूर जो मुकालमा अपने साथ के साथ किया वो आपने सुन लिया, इमाम हुसैन की तरफ आना शुरू किया। अब हमारे पास मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, लेकिन सैयदुश्शुहदा के सामने जाए किस मुंह से। यकीन फरमाइए हम लोग इन लोगों के जज्बात को फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो कल्चर नहीं है। हुर के सामने जो बहुत बड़ी मुश्किल है वो ये कि मैं बच्चों की प्यास का जिम्मेदार हूं, अब मैं हुसैन के सामने जाऊं कैसे जाऊं। तो वो जो मशहूर रिवायत है ना कि आंखों में पट्टियां बांध ली हाथों में रस्सियां, गुलामों की तरह लेकर जाओ मुझे, मैं खताकार हूं। सैयदुश्शुहदा के सामने पहुंचे, गुलामों की तरह कदमों में गिर गए, मौला हल्ली तौबा, क्या मुझे भी माफी मिल सकती है। तो मैं कहूंगा हुर ये तो करीम इमाम है, ये करीम इमाम है, इनके दर पे तो सबके लिए तौबा कबूल है। हुर की तौबा भी कबूल हो गई, सैयदुश्शुहदा ने गले से लगा लिया और वो जो अगला कदम हुआ बीबी ज़ैनब से सलाम पहुंचा दिया। वो तो नहीं मालूम क्या हो गया, फिर मैं तो समझता हूँ हुर तो अपने नसीब में वैसे ही आसमान पे पहुंच गए होंगे कि अली की बेटी सलाम कह गई है, अब बच्चा क्या, तो बड़ा नसीब हो गया है। तो वैसे ही तैयार हो गए होंगे कि अब मैं सब कुछ कुर्बान करूं जल्दी जल्दी। गोया सैयदुश्शुहदा से कहा कि मौला पहले मेरा बेटा चला जाए, पहले मेरा बेटा जाए, इजाजत मिली, गोया बेटे को रवाना किया। इख्तलाफ रिवायात के मुताबिक बेटे को रवाना किया, बेटा जमीन पे गिरा, मुझे नहीं मालूम बेटे ने बाप को बुलाया या बेटे ने इमाम हुसैन को बुलाया, लेकिन गोया हुर खड़े हुए कि बेटे का लाशा लेकर आए। इमाम हुसैन ने कहा देखो हुर तुम हजार का लश्कर छोड़कर हम गरीबों के पास आ गए, बड़ी बात है, तुमने आंखों पे पट्टियां बांध ली हाथों में रस्सियां बांधकर तौबा की, ये भी बहुत बड़ी बात थी, तुम हम प्यासों को कुर्बान होने के लिए खड़े हुए हो ये भी बड़ी बात है, लेकिन और जवान बेटे का लाशा लाओ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जवान का लाशा तुम नहीं ला सकते, जवान का लाशा तेरे जवान का लाशा मैं लेकर आऊंगा, बस अब मेरे अंदर तो कहने की जरूरत नहीं है कि अभी कुछ ही देर के बाद एक 18 साल का जवान एड़ी लगड़ेगा, उसका लाशा कौन उठाने वाला है, ये इमाम हुसैन उठाएगी या ज़ैनब उठाएगी, अल्लाह जानता है। बताएगा जी मारका हुआ और जमीन पे गिरे, पर दो मिनट की जहमत आपको और दूंगा, मसाइब का ये हिस्सा नहीं अर्ज करता हूं मैं, मुझे लगता है कमी कर गया। और जमीन पर गिरे, सैयद शोदा वहां पर पहुंचे, हुर के ऊपर एक रुमाल बांधा। अब वो रुमाल बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल था, नहीं मालूम उस रुमाल की क्या तासीर थी, लेकिन वल्लाह जब मौलाना साहब ये मसाइब के हिस्से में पहुंचे ना, तो मेरा दिल चाह रहा था काश उस रुमाल का एक धागा मेरे कफन में पहुंच जाए, एक धागा पहुंच जाए। ये तो नहीं मालूम कि दुआ कैसे कबूल होगी, लेकिन आरजू करने में क्या बुराई है, शायद हुसैन की बरकतों से ये भी नसीब हो जाए। सैयदुल शुहदा ने हुर की गोया पेशानी के ऊपर वो रुमाल बांध दिया। अब आपको मालूम है हुर का रोजा करबला से थोड़ा फासले के ऊपर है, वो क्यों है, हुर का कबीला बहुत बड़ा कबीला था, रियाही कबीला बहुत बड़ा कबीला था, जब लाशों की बारी आई तो रियाही कबीला बीच में आ गया, कहने लगा हम अपने बंदे का लाशा यहां कुर्बान नहीं होने देंगे, वो हुर का लाशा लेके दूर चले गए, हुर के लाशे को कहीं और दफना दिया। जो आप ज़ियारत पे गए होंगे आपने देखा होगा हुर का लाशा काफी दूर दफन हुआ होगा, उनकी खबर दूर है। तो ये ईरान में एक बादशाह हुआ करता था नासिरुद्दीन शाह, नासिरुद्दीन शाह अहले बैत का चाहने वाला था, करबला ज़ियारत के लिए गया, करबला ज़ियारत के लिए गया तो कहने लगा मैं हुर की कब्र पे नहीं जाऊंगा, कहने लगा मैं हुर की कब्र पे नहीं जाऊंगा। उलमा ने कहा सही नहीं है, अहले बैत का साहबी है, उनकी कब्र पे क्यों नहीं जाएगा। कहने लगा कि अगर ये हुसैन का साहबी होता तो करबला में दफन क्यों नहीं हुआ, करबला से बाहर क्यों दफन हुआ। उन्होंने कहा भाई वो कबीले वाले उठा के ले गए थे। कहने लगा इसका मतलब है इमाम राजी नहीं है, घर ऐसी बातें मत करो, इमाम हुसैन का साहबी है। कहने लगा अच्छा साहबी है ना तो मैं बादशाह हूं, मैं कहता हूँ कब्र खोलो मैं कब्र देखता हूँ। अल्लाह अकबर, लोगों ने डांटा समझाया कि देख हुर की कब्र है मत खोल। कहने लगा नहीं मुझे कब्र खोलनी है, मुझे देखना है क्या है वाकई साहबी इमाम हुसैन है या नहीं है। जनाब कब्र खुदवा दी उसने, कब्र जो खुदवाई तो देखा हुर का लाशा वैसे का वैसा जैसे इमाम हुसैन ने दफनाया था, वैसे का वैसा रखा। अब तो लाशे को देखा तो रुमाल पेशानी पे बंधा हुआ था, रुमाल अभी तक पेशानी पे बंधा हुआ था। ये बादशाह था ना, कहने लगा ये रुमाल तो वही रुमाल है। लोगों ने कहा हाँ ये वही रुमाल है। कहने लगा रुमाल निकालो, लोगों ने कहा नहीं हुसैन की अमानत है हाथ भी मत लगाना। कहने लगा नहीं मुझे रुमाल चाहिए। अब जो रुमाल खोला ना तो खून का फव्वारा दोबारा निकल आया, दोबारा खून निकलना शुरू हो गया, दोबारा रुमाल बांधा। क्या समझ में आया, हुसैन अपने बंदे को नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। 1400 साल के बाद भी जो तोहफा दिया था का ये होते रही है, कोई नहीं ले सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं खुदाया तेरे हुसैन के नाम पर रोए, हुर के नाम पर रोए, उनको एक तोहफा मिला है खुदाया, हुर के जैसे नसीब हमें भी नसीब फरमा, उनके जैसे तोहफे हासिल करने की ज़ादत नसीब फरमा, उनकी तरह अपने वक्त के इमाम की नुसरत में शहादत नसीब फरमा। वज़े आलमुल्लज़ीन दरमू अय्यामन क़ल्बियन क़ल्बून मातम हुसैन।